आज कुछ सवाल जमा हो गए हैं। वैसे तो हम इस वक्त किसी न किसी बात का तذکرہ कर लेते हैं जो हमारे लिए अमली लिहाज से या हमारी दीनी सोच के लिहाज से फ़ायदे का ज़रिया हो। बहरहाल मसाइल का हल भी एक ज़रूरत है, और आज चूँकि हमारा कोई प्रोग्राम नहीं हुआ था दोपहर को भी, तो चंद सवालात कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कितना वक्त बाकी है। वक्त तो खैर ज़्यादा नहीं है। एक तो सवाल ये था कि किसी के ज़िम्मे बहुत से नमाज़ों और रोज़ों का फ़दिया है, और एक एक फ़दिया अगर वो देखें पूरी ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ जो नमाज़ें और रोज़े हैं तो बहुत बड़ी मकदार बन जाती है, तो क्या करना चाहिए? इसका जवाब ये है कि वैसे अगर देखा जाए कि एक सदक़े फ़ितर की मकदार जो अगर देखा जाए तो गुज़िश्ता साल तो तकरीबन $2.5 था, और इस साल हो सकता है कीमतें बढ़ी हैं तो तकरीबन $3.5 के करीब बन जाएगा मेरा ख़्याल है। तो वैसे मकदार ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ ज़िंदगी भर की नमाज़ों के लिहाज से देखें तो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और ख़ास तौर पे फिर 5 नमाज़ें और फिर वितर भी, उसकी भी क़ज़ा लाजिम होती है, तो 6 एक दिन के 6 फ़िदिया होते हैं। एक 6 गोया सदक़े फ़ितर की मकदार एक दिन के एतबार से एक दिन की नमाज़ों के लिहाज से अदा करनी है। तो बहरहाल अगर किसी के ज़िम्मे बहुत ज़्यादा हैं, अदा करने में मुश्किलात हों, तो ये भी किया जा सकता है, अगर के यानी ये भी मुमकिन है, और ये भी किया जा सकता है कि किसी और मुल्क में अदा करें। जिस मुल्क में अदा करेंगे वहाँ की कीमत के लिहाज से अदा करेंगे। जैसे गुज़िश्ता साल यहाँ पर सदक़ा फ़ितर की मकदार थी तकरीबन $2.5 के करीब, और हिंदुस्तान में सदक़ा फ़ितर की मकदार $1 से भी कम थी, $1 के करीब थी। तो ऐसा भी किया जा सकता है कि हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में वहाँ गुराबा को दिया जाए, और वहाँ पर वो सदक़े फ़ितर की मकदार अगर भेज दी जाए, वो मकदार के लिहाज से जितनी भी नमाज़ें वगैरह बनती हैं उसके फ़िदिया की मकदार, तो वहाँ पर भी अदा किया जा सकता है। जिस मुल्क में अदा करेंगे वहाँ के लिहाज से कीमत का एतबार किया जाएगा, तो ये एक सहूलत की सूरत हो जाती है। यही मसला हमारा क़ुरबानी में भी होता है कि इस मुल्क में क़ुरबानी बहुत महंगी है, बल्कि निसाब की जो मकदार बनती है चांदी के लिहाज से उससे ज़्यादा या उसके करीब करीब तकरीबन एक छोटा जानवर आता है, बल्कि अब तो उसकी कीमत और ज़्यादा है। तो इसलिए अगर कोई दूसरे किसी मुल्क में क़ुरबानी करवा लेता है तो $30, बाज़ जगहों पर $35 में एक हिस्से की क़ुरबानी हो जाती है, हर साल की कीमतों में थोड़ा सा फ़र्क होता है, तो और इतना तो ज़ाहिर है कोई भी कर सकता है। तो ये सहूलतें हमारे लिए हैं आजकल के लिहाज से कि चूँकि रबते आसान हैं, और किसी और जगह पर रकम भेज कर क़ुरबानी करा देना या फ़िदिया अदा करा देना आसान है, तो इस पर भी अमल किया जा सकता है। एक सवाल है, किसी की तरफ से सवाल है, मार्च की 25 तारीख को वो किसी के 3 महीने के बेटे का ऑपरेशन है, तो उसके लिए दुआ करनी है। तो बहरहाल हम सब की ज़िम्मेदारी है, हम इस ग्रुप में जितने शामिल हैं, इस जमात में जितने शामिल हैं, वो आपस में एक दूसरे का हक रखते हैं, एक ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे एक दूसरे को न जानते हों। बहरहाल अल्लाह ताला जो भी बीमारी है उससे अल्लाह ताला मुकम्मल सेहत अता फ़रमाए, जो इलाज है उसमें अल्लाह ताला कामयाबी अता फ़रमाए, और हर तरह की परेशानी दूर फरमाए, आसानी फरमाए। एक सवाल है, बज़ाहिर सवाल का मतलब ये है कि अगर किसी को हमने कर्ज़ की रकम दी है, कर्ज़ के तौर पर, तो वो रकम जो कर्ज़ के तौर पर किसी के पास है उस पर ज़कात लाजिम होगी या नहीं होगी? कर्ज़ जब किसी को देते हैं और ये पता है कि सामने वाले को भी मालूम है कि उसके ज़िम्मे कर्ज़ है और वो अदा करना, ज़ाहिर है कि वो इनकार भी नहीं कर रहा, और हमें भी ग़ालिब गुमान और उम्मीद यह है कि वो मिल जाएगा, वो कर्ज़ मिल जाएगा वापस। तो इस सूरत में वो गोया हमारी ही रकम है जो उसके पास रखी हुई है, इसी तरह है जैसे हम बैंक में रखते हैं या किसी शख्स ने कर्ज़ लिया हुआ है। दोनों सूरतें करीब करीब ही हैं। बहरहाल उस पर ज़कात लाजिम है, जैसे बैंक में रखे हुए पैसों पर ज़कात है, इसी तरह कर्ज़ के तौर पर किसी को पैसे दिए हैं उस पर भी ज़कात लाजिम है। हाँ, अगर मिलने का न मिलने का ख़तरा हो और उसमें अंदेशा हो कि पता नहीं मिले या न मिले, तो मामला मुख्तलिफ है। बहरहाल मिल जाने के बाद, ज़कात जब मिल गई, अगर उम्मीद है कि ज़कात मिल जाएगी, तो चाहे अभी से अदा कर दें या मिल जाने के बाद उसके गुज़िश्ता सालों की ज़कात अदा कर दें, लेकिन ज़कात बहरहाल देनी होगी उन पैसों पर जिसके मिलने की उम्मीद है। बच्चों के हिज़ मुकम्मल होने के करने के लिए दुआ, अल्लाह ताला आसानी फरमाए, हिज़ को अल्लाह ताला आसानी से मुकम्मल फरमाए और क़ुरान की सही समझ और उस पर उसका इल्म अता फरमाए और कबूलियत भी अता फरमाए। सवाल है कि अगर कोई हदिया देता है 40 मिनट दीनी बात करने के बिना पर, तो क्या करना चाहिए? हदिया कितना होना चाहिए? दीनी बात, अगर कोई मसलन कोई दीनी बात कर लेता है और उसके मुकाबले में उसको हदिया दिया जाए, हदिया की कोई मकदार नहीं होती। हदिया तो असल के लिहाज से किसी से एक मोहब्बत की एक अलामत और दलील के तौर पर होता है, तो उसकी कोई लिमिट मुतय्यन कर लेना कि कितना होना चाहिए। हर एक की देने वाले की हैसियत, जिसको दिया जा रहा है उसकी हैसियत, दोनों को देखकर हदिया दिया जाता है, कोई हर्ज नहीं। कभी कोई छोटी चीज़ हदिया में दी जाए, और हदाया में हम लोगों के यहाँ बड़े तकल्लुफात होते हैं, सजाई हुई चीज़ हो, बहुत ज़्यादा मुज़य्यन चीज़ हो, चाहे काम की हो या ना हो, देखने में अच्छी लगती हो, या रकम हो तो बड़ी रकम हो, इन सब तकल्लुफात की ज़रूरत नहीं है। इंसान चाहे, कभी हम लोगों में वो शायद पहले कई बार तज़किरा आया है, लेकिन कभी कभी कोई शख्स किसी को मसलन चावल की बोरी हदिया में दे दे, ये भी हदिया कहलाता है और ये काम आने वाला हदिया कहलाता है। नमक हदिया में दे दे, चीनी हदिया में दे दे, ऐसी चीज़ें भी हदिया कहलाती हैं जो आम इस्तेमाल की चीज़ें हैं। और हदीस में तो यह आता है कि अगर कोई नमक किसी को देता है, अब सामने वाला खाना पका रहा है, खाने में नमक इस्तेमाल कर रहा है, तो जितना खाना उस नमक की वजह से लजीज हुआ है, उसमें लज्जत पैदा हुई है, तो ये देने वाला नमक देने वाले को उसका सवाब मिल रहा है। बहुत आसान, शरीयत ने तो सवाब लेना बहुत आसान कर दिया, हमने तकल्लुफात के ज़रिए से उसको मुश्किल कर दिया है। तो इसलिए इसमें कोई पाबंदी नहीं है। इतना है कि लेने वाला इस मकसद से, बयान करने वाला इस मकसद से बयान ना करे कि हदिया मिलेगा, और देने वाला जो भी दे दें अपनी हैसियत के मुआफिक, अपनी सहूलत के मुआफिक। तो और ऐसा भी नहीं है कि हर मरतबा दिया ही जाए, वरना वो तकल्लुफात बढ़ जाते हैं उसमें। कभी दे दिया खुशी में, दिल चाहा, लेकिन चुप कैसे? मजमे के सामने ना हो, चुप कैसे हो? हदिया के तौर पर हो और मुआवजे के तौर पर ना दिया जाए, वैसे ही दे दिया जाए, कोई हर्ज की बात नहीं है। हाँ, बाकी ये अपनी जगह बात है कि इंसान को अगर बार बार इस तरह बातों पर, इस तरह दीनी बात करने पर अगर हदिया मिलते रहें, तो इंसान की अपनी नीयत जो है उसमें खलल आने लग जाता है, और फिर उसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि इखलास के बजाय वो पैसों के लिए करने लग जाए। ये इंसान जो जो लेने वाला है उसके लिहाज से एक वो ख़तरे की चीज़ होती है, देने वालों के लिए तो बहरहाल सवाब ही का काम है। इस बारे में बहरहाल कोई तहदीद करना और कोई उसूल मुतय्यन करना मुश्किल है, यही उसूली बात हुई थी जो मैंने बता दी। सवाल जवाब रिकॉर्ड, हाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, इंशाल्लाह भेज देंगे। किसी ने कहा है कि जो खजूरें इसराइल से आती हैं उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वैसे तो अगर देखा जाए तो वो फ़लस्तीन वगैरह का इलाका, वो इलाका है, अब इसराइल कह लें, इसराइल अलग है, फ़लस्तीन का इलाका है, लेकिन वहाँ पर भी مشکلات ہیں، اب اس کا نفع کس کو پہنچ رہا ہے، بہرحال وہ زمین تو وہ برکت والی زمین ہے، لیکن اتنا ہے کہ جو منع کرتے ہیں وہ اس لحاظ سے منع کرتے ہیں کہ اس سے فائدہ ان لوگوں کو پہنچتا ہے. بہرحال وہ انسان کی اپنی سوچ کے اعتبار سے، حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے، باقی یہ ہے کہ ہاں یعنی انسان کس کو نفع پہنچا رہا ہے یہ سوچ لے کہ اگر مثلا مدینہ منورہ سے کھجور لے رہا ہے بہت اچھی بات ہے کہ اہل مدینہ کو فائدہ پہنچا رہا ہے، مکہ مکرمہ سے کھجوریں خرید رہا ہے تو اہل مکہ کو فائدہ پہنچا رہا ہے، جہاں سے خریدے گا وہاں والوں کو فائدہ ہوگا. اب انسان خود سوچ لے کہ کس کو فائدہ پہنچانا ہے، اس کے لحاظ سے کہ جس جگہ کی کھجوریں لے گا وہاں والوں کو فائدہ پہنچائے گا. یہ چیز بہرحال سب کو سمجھ میں آنے والی ہے، اس اصول پر انسان عمل کر لے تو اب اپنے ملکوں کو فائدہ پہنچائے، اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، کس کو فائدہ پہنچانا ہے، ہر ایک کی اپنی سوچ کے لحاظ سے. ظاہر ہے کہ یہ چیزیں یعنی اس کی اہمیت تو ہے لیکن حلال حرام سے اس کا تعلق نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کی جو کلاسیں ہوتی ہیں اس میں بعض طلبہ طالبات اگر کمزور ہیں تو ان کے لیے علیحدہ کلاس ہونی چاہیے یا سب کو تھوڑا تھوڑا کم آہستہ پڑھانا چاہیے؟ اب ظاہر ہے کہ تو سوال مفصل ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ حالات کے لحاظ سے اس میں کتنا انتظام ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے جواب دینے کے لیے اصول تو یہی ہے کہ مختلف درجے کے لوگوں کے مختلف الگ الگ استاد ہونے چاہیے یا الگ الگ ان کے لیے اوقات ہونے چاہیے، لیکن یہ بھی دیکھا جائے گا کہ پڑھانے والے کتنے ہیں، اسباب کتنے موجود ہیں، اوقات کتنے ہیں، تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا. ورنہ اصولی بات تو یہ ہے کہ جو اعلیٰ ہوں ان کے لیے، جو زیادہ تیز ہیں جن کو زیادہ آتا ہے ان کو آگے درجہ ہو، اور جن کے لیے آہستہ ہیں ان کے لیے نیچے ہو. لیکن یہ اصول ہر جگہ نہیں چلتا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض کمزور ہوتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے، وہ بھی ماحول کی وجہ سے ان کو فائدہ ہوتا ہے، اور وہ ذہین طلبہ کو دیکھ کر یہ بھی ذرا ہمت میں آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد بھی ہو جاتی ہے. تمام کمزور طلبہ اگر ایک جگہ ہو جائیں تو بھی مشکلات ہوتی ہیں. تو یہ اتنے مختصر جملے میں شاید میرا یہ پوری بات سمجھ میں نہ آئے. بہرحال حالات کے لحاظ سے، وہاں کی ضروریات کے لحاظ سے، استاد کتنے ہیں، کیسی کلاس ہے، کیا وجہ ہے کہ وہ کمزور ہیں، ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کا اس مسئلے کا حل کیا جا سکتا ہے. ہاں جو لوگ کہتے ہیں کہ اوائڈ کرنا چاہیے وہ صحیح کہتے ہیں کہ انسان اس میں، جیسے اصولی بات میں نے سمجھا دی تھی اس سے یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے. اچھا ایک اور سوال ہے، مختلف درود کے مختلف فضائل بعض لوگ بیان کرتے ہیں. ہاں اصل میں بعض مختلف فضائل مختلف درود کے بعض تو احادیث میں آئے ہیں اور بعض وہ ہیں جو احادیث سے ثابت نہیں ہیں، یعنی بعض صحیح حدیثوں میں ہیں، بعض ضعیف حدیثوں میں ہیں، اور بعض ایسی حدیثیں ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. تو یہ مختلف درجے کی حدیثیں ہیں، اس لیے ہر بات پر پورے طور پر یقین نہیں کیا جا سکتا. فضائل درود شریف پر کتابیں ہیں، ان میں بھی اس طرح کی باتیں مل جاتی ہیں. بہرحال یعنی یہاں پر بھی ہر ایک کا الگ الگ درجہ ہوگا. بعض فضائل وہ ہیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہیں، بعض فضائل وہ ہیں جو مناسب اور معتبر حسن درجے کی روایتیں ہیں اس سے ثابت ہیں، بعض فضائل ضعیف روایتوں سے ثابت ہیں، اس کو بھی ہم قبول کر لیں گے فضیلت کے معاملے میں. لیکن بعض وہ فضائل ہیں جن کے بارے میں ضعیف روایت بھی نہیں ہے، تو ظاہر ہے ان کو ہم پھر قبول نہیں کر سکتے. تو اس میں الگ الگ درجات ہیں، مختلف فضائل مختلف درود کے لیے آئے ہیں، یہ بات تو درست ہے، لیکن درجات مختلف ہیں ان کے. اگر کوئی پوچھتا ہے، اچھا وہ جو ہدیہ والا سوال تھا، کوئی پوچھتا ہے کتنا ہدیہ چاہیے، تو کہیں کوئی ہدیہ نہیں چاہیے، ہدیہ تو مانگنا مناسب نہیں ہے کسی دینی بات پر. اچھا اب ہمارا وقت پورا ہو گیا، مزید اگر کچھ ہوں گے سوال جواب تو انشاءاللہ پھر آئندہ مجلس میں، انشاءاللہ منگل کو امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنا یہ ترتیب رکھیں گے دوپہر کی، آئندہ ہفتے کی جو ترتیب ہے انشاءاللہ رہے گی. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.